विश्राम भी कर लिया थोड़ा बहुत अभी।
यस,
चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बता चुके हैं कि जिस भाग्यवान व्यक्ति ने गुरु कृष्ण के प्रसाद के द्वारा भक्ति लता प्राप्त की है उसे एक माली बनना चाहिए और अपने हृदय में स्थित करना चाहिए आदि इस जल से, और जितनी अच्छी तरह से वो ऐसे सिंचन करेगा वैसे ही ये पौधा बढ़ेगा, इसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पौधे का। फिर आगे जैसे ही ये अंकुरित होता है ये बीज और बढ़ने लगता है तो फिर क्या होता है इस भक्ति लता को, तो इसका वर्णन आगे चैतन्य महाप्रभु करते हैं। उपजिया बड़े लता ब्रह्मांड भेद जाए,
उपजिया बड़े लता ब्रह्मांड भेद जाए,
विरजा ब्रह्म लोक भेदी पर व्योम पाए,
विरजा ब्रह्म लोक भेदी पर व्योम पाए।
उपजिया मतलब जब इसका सिंचन वगैरह होता है, खेती होती है अच्छी तरह से, पानी वगैरह दिया जाता है इसको, तो बाड़े लता मतलब वो लता बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाती है वो लता, ब्रह्मांड भेदी जाए, ब्रह्मांड को भी पार करके जाती है। जैसे हम यहाँ अभी बेलगाम में बैठे हैं गोकुल धाम में, तो भक्ति लता बढ़ेगी, बढ़ते 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 हमें दिखती नहीं है इन आँखों को, वो भक्ति लता बढ़ रही है बढ़ रही है, बढ़ते 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 फिर वो आसमान को पार करके, फिर ऊपरी लोकों को पार करके स्वर्ग लोक, जन लोक, महर लोक, तपलोक, सत्य लोक, और उसके बाद ब्रह्मांड के आवरण होते हैं, तरह तरह के आवरण। ब्रह्मांड के आवरण बहुत मोटे होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं, उनको भी पार कर देती है ये भक्ति लता। तो देखो कितनी तेज है, क्योंकि ये आध्यात्मिक है ना, तो ऐसे आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक चीजों को पार करने में कोई कठिनाई नहीं है। विरजा ब्रह्मलोक भेदी पर व्योम पाए, तो इस प्रकार से इस ब्रह्मांड के आवरण को पार करके विरजा में वो पहुंच जाती है। ये विरजा क्या है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच का एक समुद्र है, कभी कभी इसे नदी भी बोलते हैं, परंतु नदी पानी इतना विशाल है, यह समुद्र है, वास्तव में समुद्र की तरह ही है। और विरजा नाम कहाँ से आता है किसी को पता, इस स्थान को भी हमने विरजा नदी बताया है, विरजा इस गोकुल धाम का ये जो भाग है जिसमें हम बैठे हैं 12 एकड़, इसको हमने नाम विरजा दिया है। क्यों,
जहाँ रजोगुण नहीं है,
जहाँ रजोगुण नहीं है, ये एक कारण है। विगत रजा, रज मतलब रजोगुण और विगत मतलब जहाँ वो नहीं है, तो वो स्त्रीलिंग है तो आ हो जाता है, तो विरजा वो नदी या वो समुद्र जहाँ की रजोगुण नहीं है, तो यहाँ भी विरजा में रजोगुण नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए उत्साह होता है, परंतु भौतिक रजोगुण यहाँ नहीं है। और एक कारण क्या है गोकुल धाम के, कोई बताओ स्थान का नाम विरजा क्यों है,
भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के
मतलब क्या,
अंदर
गोलोक, अंदर गोलोक है और ये बाहर का जगत है, तो ये बीच का स्थान है, इसलिए अरे आपको नहीं पता था, पता था ना। यहाँ थोड़ी बहुत छूट दी जा सकती है नियमों में, मतलब यहाँ भी वैसे काफी कड़े रूप से चीजों का पालन किया जाता है, ज्यादा बाहरी तकनीकी चीजें को इस्तेमाल नहीं करते, यंत्र आदि बहुत सीमित, जैसे बोर है और यहाँ एक टेलीफोन है, ऐसे थोड़ा बहुत कुछ इस्तेमाल किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। परंतु वहाँ जब जाएंगे गोकुल में, बड़े जमीन में जहाँ आज हम गए थे, अभी भले थोड़ा कुछ हो लेकिन आगे चल के ऐसे कुछ नहीं होगा। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कुछ नहीं होंगे वहाँ, तो ये बीच का स्थान है, ना बाहर के जगत का है ना ये अंदर का है, इसलिए इसका नाम बिरज है। तो इसी तरह से भक्ति लता उसको पार करके विरजा तक पहुंचती है। विरजा में फिर आगे क्या है, ब्रह्मलोक। ये ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का सत्यलोक नहीं है, कभी कभी निराकार ब्रह्म को भी ब्रह्मलोक कहते हैं, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के लोक को जो भी ये ब्रह्मांड के भीतर है उसको भी ब्रह्मलोक कहते हैं, और कभी कभी निराकार ब्रह्म को भी ब्रह्मलोक कहते हैं। तो जब भी ये आएगा तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो ये भक्ति लता बीज, हम यहाँ बैठे हैं गोकुल धाम में, यहाँ बैठे बैठे भक्ति लता ऊपर जाके ब्रह्मांड के आवरण को पार करके, विरजा पार करके निराकार ब्रह्म में पहुंच जाती है। अच्छा, भक्ति लता भौतिक नहीं है। तो ये भक्ति लता जिस तरह से बढ़ती है उसके बारे में प्रभुपाद जी क्या क्या कहते हैं हम सुनते हैं, कोई पढ़िए जोर से।
साधारणतः बड़े वृक्ष का सहारा लेती है।
कौन सी लता? साधारण जो हम दुनिया में देखते हैं, क्रीपर्स जो होते हैं, क्रीपर को कोई तो सहारा चाहिए ना, कोई पेड़ है कोई खंबा है, इसको सहारा लेके वो चढ़ता है साधारणतः।
परंतु लता जो कि आध्यात्मिक है किसी अन्य की सहायता नहीं लेती।
हाँ, परंतु ये भक्ति लता साधारण भौतिक लताओं की तरह नहीं है, वो और किसी का सहारा लेके नहीं चलती, भौतिक वस्तु का सहारा नहीं लेती है।
दूसरे शब्दों में भक्ति लता किसी अन्य भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं, जैसे देश देवताओं की आराधना इत्यादि।
हाँ, तो ये आध्यात्मिक है भक्ति लता, इसलिए आध्यात्मिक लता भौतिक चीज का सहारा कैसे ले सकती है। आध्यात्मिक वस्तुएं भौतिक चीजों की आधार होते हैं, परंतु कभी भी भौतिक चीज आध्यात्मिक चीज का आधार नहीं होता। तो भक्ति लता जब बढ़ने लगती है यहाँ से, वो भौतिक चीज का आश्रय नहीं लेती है। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति लता या भक्ति को किसी भौतिक चीज में नहीं लगाया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो भक्ति को किसी भौतिक उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। और साथ साथ में यदि भक्ति हम कहें कि हम देवताओं की भक्ति करते हैं, देशभक्ति करते हैं, तो ये भक्ति का सही प्रयोग नहीं है। भक्ति केवल कृष्ण के लिए है, केवल जो संपूर्ण आध्यात्मिक वस्तु हैं उन्हीं के लिए। तो ये तात्पर्य है भक्ति लता के बढ़ने का, बिना कोई भौतिक सहारा लिए। अच्छा, फिर आगे क्या होता है, वो आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। पर व्योम पाए, पर व्योम, व्योम मतलब आकाश, पर मतलब परम। तो इस तरह से निराकार ब्रह्म को भी पार करके फिर वो आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाती है। अच्छा, वहां वैकुंठ लोक बहुत सारे हैं ना, तो वैकुंठ लोकों को भी पार कर लेती है। जैसे ही आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करते हैं, विरजा पार करके निराकार ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति में अनंत कोटि अनगिनत वैकुंठ लोक होते हैं, एक से बढ़कर एक। लंबाई में, चौड़ाई में, ऐश्वर्य में, सौंदर्य में, और भक्ति लता उनको भी पार करके जाती है, आगे 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 निकलते जाती है। किसकी ओर जाती है? गोलोक वृंदावन की ओर। तो क्या गोलोक वृंदावन वैकुंठ में नहीं है? है। संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को वैकुंठ जगत कहते हैं, क्योंकि वहां कोई कुंठ या तनाव, कष्ट, दुख आदि नहीं है। तो वैकुंठ जगत में अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं जो पूर्णतया आध्यात्मिक हैं, और साथ साथ इनमें से जो प्रमुख आध्यात्मिक लोक वैकुंठ जगत में है वो गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन और वैकुंठ, अन्य वैकुंठ लोकों में अंतर ये है कि गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं, बल्कि अन्य वैकुंठ लोकों में श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण स्वरूप में निवास करते हैं। तो ये भाव का बहुत बड़ा अंतर होता है, रस का अंतर होता है। तो ऐसे ये पहुंचते बढ़ते बढ़ते ये लता पहुंच जाती है गोलोक वृंदावन, और फिर आगे महाप्रभु कहते हैं, तबे जाए तदुपरी गोलोक वृंदावन,
तबे जाए तदुपरी गोलोक वृंदावन,
कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण,
कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण।
तबे जाए मतलब उसके बाद जाती है, तदुपरी उसके भी ऊपर मतलब वैकुंठ लोकों के भी ऊपर गोलोक वृंदावन, और गोलोक वृंदावन में क्या करती है? कृष्ण चरण कल्प वृक्षे कौरे आरोहण। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को कल्प वृक्ष कहा गया है, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमल हमारे समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो फिर यहाँ बैठे बैठे वो भक्ति लता बढ़ते बढ़ते अंततः गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच जाती है। इसके बाद कौन सा है?
भक्ति लता का अंतिम ध्येय।
हाँ, तो इस तरह से भक्त बढ़ते बढ़ते वो वैकुंठों को भी पार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भी यहाँ वैकुंठ और गोलोक वृंदावन के बीच में जो एक रस का अंतर है उसकी भी व्याख्या करते हैं। हाँ, तो पढ़िए, भक्ति लता का अंतिम ध्येय गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के चरण कमल।
भक्ति लता वैकुंठ को भी पार कर जाती है जब ढाई रस प्रकट होते हैं, वह यह लता गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है जहाँ पर पांचों रस रसों का आस्वादन होता है। वैकुंठ में शांत दास्य गौरव और सख्य
गौरव सख्य
गोलोक नाम है पांचों रस।
तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वैकुंठ और गोलोक में अंतर क्या है। श्री कृष्ण और नारायण में वैसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, भगवान नारायण भी वही कृष्ण है। इतना ही है कि वो एक ऐश्वर्य का रूप ग्रहण करते हैं, और अपने भक्तों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान होता है उसमें एक ऐश्वर्य की भावना होती है, और उतनी निकटता प्रेम में नहीं होती जितना कि गोलोक वृंदावन में होता है। शांत रस, दास्य रस, ये तो वैकुंठ में है, और सख्य रस प्रभुपाद जी समझाते हैं दो प्रकार के होते हैं। सख्य रस मतलब क्या है? मित्रता का भाव। तो एक मित्रता का भाव है गौरव सख्य, जिसमें कि जो भक्त है वो भगवान को अपना मित्र तो मानता है, फिर भी एक थोड़ा अंतर होता है। मित्र मानते हुए भी भगवान को अपना अपने से समान नहीं मानता, अपने से बराबर नहीं मानता। ये मेरे मित्र हैं लेकिन फिर भी भगवान है, तो ये एक भावना रहती है। तो क्योंकि उस मित्रता के भावना में भी एक ऐश्वर्य की भावना रहती है, उतनी निकटता नहीं रहती है और समानता की भावना नहीं रहती है, इसलिए इसे गौरव सख्य कहते हैं। परंतु गोलोक वृंदावन में ये गौरव सख्य नहीं होता। गोलोक वृंदावन में ग्वाल बाल क्या करते हैं, कृष्ण के साथ में चढ़ जाते हैं कंधे के ऊपर, कभी उनके भोजन चोरी कर लेते हैं, उनको डांट देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कभी उनके साथ बहुत से खेल खेलते हैं, इतने निकट में आलिंगन करते हैं। तो इतने निकट का संबंध गोलोक वृंदावन में ग्वाल बालों का है कृष्ण के साथ में, उसमें कोई ऐश्वर्य भाव नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है ग्वाल बालों में और कृष्ण में। इतना निकट है, इतना मधुर है वो संबंध कि ग्वाल बाल कृष्ण को अपने समान ही समझते हैं। तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही हमेशा हो, तुम कौन से बड़े आदमी हो, तो हम तुम्हारे जैसे हम भी हैं, तुमने असुरों का वध किया, हम भी कर सकते थे, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। तो ये भाव होता है, लेकिन ये भाव ईर्ष्या से नहीं कह रहे ये लोग। कभी कभी इस दुनिया में लोग ईर्ष्या से कहते हैं, अरे उसने ऐसे काम को वो क्या हुआ, उसने हम भी कर सकते थे, हालांकि नहीं कर सकते थे, फिर भी हम बोलते हैं। परंतु ये हमारा कहना ईर्ष्या द्वेष आदि से उत्पन्न होता है। परंतु गोलोक वृंदावन में सभी कोई जो है वो कृष्ण प्रेम के स्तर में स्थित है, तो उनके मन में कभी भी कोई द्वेष ईर्ष्या आदि हो ही नहीं सकती, और खास करके कृष्ण के प्रति। तो वो जब ऐसे कहते हैं तो वो प्रेम के द्वारा कहते हैं। कभी कभी वो धमकी भी देते हैं कृष्ण को, और कृष्ण डर भी जाते हैं। तो ये जो समानता है इसको विश्रम्भ सख्य कहते हैं। विश्रम्भ मतलब बहुत निकट मधुर। तो वैकुंठ जगत में शांत दास्य और गौरव सख्य पाया जाता है, परंतु गोलोक वृंदावन में पांचों रस पूर्ण रूपेण पाए जाते हैं। तो ये वैकुंठ जगत को भी पार करके अंततः ये भक्ति लता श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाती है। अच्छा, फिर कृष्ण के चरण कमलों में पहुंच के फिर वो क्या करती है, क्या होता है वहां पे उस लता को, भक्ति लता को फलित होता है। तो चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, ताहा विस्तारित होना फले प्रेम फल,
ताहा विस्तारित होना फले प्रेम फल,
इहा मालिश चे नित्य श्रवणादि जल,
इहा मालिश चे नित्य श्रवणादि जल।
ताहा मतलब वहां, विस्तारित होना मतलब विस्तारित होकर, फले प्रेम फल तो ये भक्ति लता फल देती है, और ये फल का नाम क्या है, प्रेम फल, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम नाम का फल है वो भक्ति लता से उत्पन्न होता है। और जितने भी हमने फल खाए हैं आज तक, वो उनमें से थोड़े खट्टे हो सकते हैं, थोड़े खट्टे मीठे हो सकते हैं, थोड़े मीठे हो सकते हैं, तरह तरह के फल हम सब ने खाए हैं आज तक, परंतु ऐसा फल शायद किसी ने नहीं खाया होगा सिवाय उन्होंने जो कि शुद्ध कृष्ण प्रेमी है। तो ये कृष्ण प्रेम का फल ये बहुत मीठा होता है, और इसकी तुलना और अन्य किसी फल से नहीं की जा सकती, भौतिक या आध्यात्मिक भी। वैकुंठ जगत के प्रेम भी का प्रेम जो है वो भी इस गोलोक के प्रेम के सामने खड़ा नहीं हो सकता, इतना श्रेष्ठ है ये। यहां माली सेचे नित्य श्रवण आदि जल, तहां विस्तारित होना फले प्रेम फल, तो वहां गोलोक वृंदावन में भक्ति लता पहुंच जाती है और कृष्ण प्रेम का फल प्रदान करती है। तहां और यहां पे माली बैठा है, भक्त है वो माली बन के रहा है ना, भक्ति लता का सिंचन कर रहा है ना इधर हृदय में। तो यहाँ बैठे बैठे गोलोक धाम में, गोकुल धाम में बैठे बैठे वो भक्ति लता जा रही है वहां फल प्रकट कर रही है, और माली कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। तो यहाँ बैठे बैठे भी हम कृष्ण प्रेम के स्वाद को अनुभव कर सकते हैं। परंतु यहाँ चेतावनी देते हैं, सेचे नित्य श्रवण आदि जल, यहाँ बैठे बैठे भी उस दिव्य माली को श्रवण कीर्तन आदि जल से भक्ति लता का सिंचन करना बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं बहुत परिपक्व भक्त हो गया, अब मैं, मेरे 10 साल हो गए अभी इस्कॉन में, अभी मैं जप करना बंद कर सकता हूँ, बहुत मैं प्रगति कर ली, या 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, या मुझे कुछ और लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे भक्त हो, तो चलो अभी जरूरत नहीं है क्लास सुनने की और भागवत पढ़ने की और जप करने की, कीर्तन में शामिल होने की। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ऐसा करने से निश्चित पतन हो जाएगा। इसलिए हरेक व्यक्ति को चाहिए कि वो श्रवण आदि के प्रति कभी भी भक्ति के किसी भी स्तर में लापरवाही नहीं करे, चाहे वो नौसुखिया भक्त क्यों न हो, या चाहे वो शुद्ध भक्त पूरी तरह से कृष्ण प्रेमी भक्त क्यों न हो, या बीच में कहीं भी क्यों न हो, श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन इत्यादि ये कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये कहाँ लिखा है ये सब?
कृष्ण प्रेम।
हाँ, तो भक्ति लता का फल हाँ ये बढ़ के क्या होता है? कृष्ण प्रेम। तो भगवान से शुद्ध प्रेम जिसमें कृष्ण भी पढ़ो जरा,
भगवान से शुद्ध प्रेम जिसमें कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं होती है,
ये कृष्ण प्रेम है। तो गोलोक वृंदावन में क्या चल रहा है, वहां का प्रेम कैसे है, ये है उसके लक्षण, कि वहां केवल कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के अलावा अन्य कोई भी इच्छा वहां के भक्तों की नहीं होती है, कोई निजी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा, कृष्ण को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। बस कौन सा श्लोक है चैतन्य चरितामृत का प्रसिद्ध श्लोक?
आत्मेन्द्रिय प्रतिवंचता बलि काम कृष्ण
से बोला,
आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछे तारे बोलि काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना।
तो क्या मतलब,
जो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है उसको काम कहा जाता है, लेकिन जो कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है उसे प्रेम कहा जाता है।
आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोलि काम, आत्म इंद्रिय मतलब अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो कामना है उसको काम कहते हैं। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम, लेकिन जब श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हमारी इच्छा रहती है तो उसको प्रेम कहते हैं। तो भौतिक जगत में केवल काम, और गोलोक वृंदावन में केवल प्रेम। तो ये अंतर है गोलोक वृंदावन और भौतिक जगत में। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं, अभी अभी चेतावनी संक्षेप में हमने कही, फिर भी पढ़ लेते हैं कि प्रभुपाद की चेतावनी क्या है, तो पढ़िए।
श्रवण कीर्तन द्वारा भक्ति लता का सिंचन होते रहना चाहिए, अन्यथा व्याधि क्यों न हो इसे श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए।
अपराध तो प्रभुपाद जी यहाँ बाद में बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते एक स्तर पर जब हम परिपक्व भक्त हो जाते हैं तो हम सोचें कि चलो अभी हम श्रवण कीर्तन बंद कर सकते हैं, पर्याप्त हमारी प्रगति हो गई, अब कोई जरूरत नहीं है, अब तो इतने बड़े हो गए भक्त, हम इतने साल हो गए, अभी ये तो नए भक्तों के लिए है ये सब जप करना, सुबह को आना और किताब पढ़ना नए वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं नहीं, जो ऐसा करेगा निश्चित ही वो भक्ति के पथ से भ्रष्ट हो जाएगा। तो श्रवण कीर्तन के पथ को छोड़ना नहीं चाहिए। और इसके पहले प्रभुपाद जी कह चुके हैं कि श्रवण कीर्तन का मतलब क्या है, भक्तों के संग में रहना या मंदिर में रहना, ये श्रवण कीर्तन है। श्रवण कीर्तन की पद्धति को स्वीकार करना अर्थात मंदिर में रहना, भक्तों के संग में रहना, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं 152 श्लोक में। भक्तों के साथ में रहना या मंदिर में रहना, इसका अर्थ है कि हम श्रवण कीर्तन की पद्धति को स्वीकार करें। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी नए भक्त सोचते हैं कि हम श्रवण कीर्तन कर सकते हैं लेकिन हमें अर्चा विग्रह की सेवा की क्या जरूरत है, हमारा तो भागवत मार्ग है ना, श्रवण कीर्तन का मार्ग, हम केवल श्रवण कीर्तन करेंगे, ये अर्चा विग्रह वगैरह सब है, ये सब नौसुखिया भक्तों के लिए है, हम तो अभी एडवांस्ड हो गए, अभी हमें अर्चा वगैरह की सेवा की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं ऐसे नहीं सोचना चाहिए, केवल हरिदास ठाकुर ऐसे कर सकते हैं और उनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए अर्चा विग्रह की सेवा हम सबके लिए भी बहुत आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो हमारे श्रवण कीर्तन पद्धति में अर्चा विग्रह भी सम्मिलित है, ये सब साथ साथ चलते हैं। अर्चा विग्रह की सेवा करने से हृदय थोड़ा शांत हो जाता है और खास करके काम वासना इत्यादि वो कम होने लगती है। इसलिए कभी भी श्रवण कीर्तन के नाम पर अर्चा विग्रह को कम महत्व नहीं देना चाहिए। भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा बड़ी अच्छे ढंग से होनी चाहिए, जिम्मेदारी से, स्वच्छता से, सही समय पर, भक्ति भाव से, हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखना चाहिए और जानना चाहिए कि ये स्वयं भगवान है जिनकी सेवा हम कर रहे हैं, केवल कोई प्रतिमा नहीं है। यदि ज्यादा परिचय के कारण अति परिचयाद अवज्ञा हो जाता है तो फिर वो भी अच्छा नहीं रहेगा हमारे भक्ति के लिए। तो अर्चा विग्रह की सेवा हमारे श्रवण कीर्तन के लिए बहुत अनुकूल है, लाभदायक है, सहायक है।
तो से महाराज एक के जो ये जो दिया है इन तीन श्लोकों में, इज इट अ मेटाफर टू एक्सप्लेन द दिस भक्ति लता? मेटाफर इज यूज्ड
फॉर एक्सेस,
इज इट अ मेटाफर यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसेस एंड फॉर ए ब्रह्म लोक?
और जो सब सबको सुनाई देना चाहिए,
ये जो ब्रह्मलोक का वर्णन है, तो एक एक बार जो सात लोक ऊपर के लोक है ना, उसको भी एक एक बार सत्यलोक या ब्रह्मलोक बोलते हैं।
तो मैं बोल रहा था ना कि दोनों ब्रह्मलोक है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आई स्टेटेड दैट टू थ्री टाइम्स कि ब्रह्मा जी के लोक को भी ब्रह्मलोक कहते हैं और कभी कभी ब्रह्म ज्योति को भी ब्रह्मलोक कहते हैं। आई सेड इन द लेक्चर 2-3 times। हाँ,
जो
कल्पना है इसको उपमा समझ सकते हैं। उपमा समझ ऐसे नहीं कि वास्तव में कुछ बढ़ रहा है, लेकिन ये एक हमारे लिए जानना बहुत अच्छा है, उपमा है एक प्रकार की, कि कैसे हमारे हृदय में भक्ति बढ़ती है। जैसे बीज है, जैसे हमने बताया जैसे पेड़ का बीज, ऐसे बीज हमारे हृदय में नहीं है। बीज मतलब क्या है?
श्रद्धा।
श्रद्धा किस बात की? और सारे जो
रूल्स रेगुलेशन
नियम पद्धतियां जो भी है सब मिला के बीज बनते हैं भक्ति लता के।
हाँ बीज के बारे में बोल रहे थे,
फल
फल तो इसको
का उदाहरण मतलब
लता के साथ तुलना कर रहे हैं।
भक्ति ही लता है, भक्ति की तुलना एक लता से की गई है और भक्ति का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ जो फल है वो है कृष्ण प्रेम। तो भक्ति की तुलना लता से की गई है, जो हमारे नियम आदि हैं उनकी तुलना बीज आदि से की गई है, जो प्रशिक्षण हमें मिलता है वो गुरु कृपा है, और फिर आगे चल के वो भक्ति जो है वो हमारे भक्ति का विकास जब होता है तो ऐसे बढ़ते 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 फिर जब उसका परिणाम प्रयोजन प्राप्त होता है वो है कृष्ण प्रेम।
अभी यहाँ पर बोले कि श्रवण कीर्तन को सिंचन करना है और वो लता जाकर फल देने के बाद में भी उनको श्रवण कीर्तन उनको सिंचन करना है, तो श्रवण कीर्तन मतलब
श्रवण कीर्तन जो बताया है कि भक्ति लता बीज का सिंचन करना चाहिए, तो श्रवण कीर्तन में क्या क्या आता है? भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान के लीला, भगवान के भक्त, भगवान का धाम, भगवान का यश, भगवान के और साथ में जितने भी और चीजें हैं और सब उनकी भगवान से संबंधित जितने भी चीजें हैं उनका गुणगान करना, ये श्रवण कीर्तन है। चाहे ध्यान से हो, चाहे जप के रूप में हो, कीर्तन के रूप में, संकीर्तन के रूप में, अध्ययन के रूप में, किसी भी रूप में भी ये सब श्रवण कीर्तन माना जाता है। अध्ययन भी एक प्रकार का श्रवण है, और जब हम कोई बात कर रहे होते हैं कृष्ण भावनामृत के ऊपर ये भी कीर्तन है। श्रवण कीर्तन में सारी चीजें आ जाती है, हमारा जप आता है, हमारा गीता भागवत का क्लास आता है, गीता भागवत और अन्य ऐसे पुस्तकों का अध्ययन करना ये भी आ जाता है। हम जब प्रचार कर रहे होते हैं या कृष्ण कथा कर रहे होते हैं, आपस में मिल के कृष्ण की कथा कर रहे होते हैं, चर्चा, वो भी श्रवण कीर्तन है।
सेवा करते हैं उसको,
सेवा भी है, लेकिन जब तक हम मुख्य रूप से कान और इसका प्रयोग कृष्ण के संदेश के लिए नहीं करेंगे वो श्रवण कीर्तन नहीं कहलाता है, वो अन्य रूप से सेवा है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि अन्य सेवाओं के लिए आवश्यक है कि हमारा आधार अच्छी तरह से बने श्रवण कीर्तन के द्वारा, नहीं तो क्या होगा, वो धार वाली बात याद है ना, वो आदमी पेड़ को काट रहा था बिना धार वाले अस्त्र से, तो वो सेवा अलग से सेवा होती है हमारी, कृष्ण के लिए ही है। आध्यात्मिक स्तर पे सब एक है, फिर भी श्रवण कीर्तन के लिए खास चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो क्या होगा, इसकी भी चर्चा हम कल कर रहे थे ना, यदि मान लो कि बहुत उत्साह से कोई सेवा कर रहा है लेकिन श्रवण कीर्तन के प्रति लापरवाही करता है तो क्या होगा, अंततः क्या होगा, आज नहीं तो कल उत्साह कम हो जाएगा और
अपराध
करने लगेगा, सेवा में रुचि कम हो जाएगी, सेवा करते करते उसकी भावना सही नहीं रहेगी, फिर अंततः
छोड़ देगा।
इसलिए दूसरी ओर हम बोले भाई श्रवण कीर्तन इतना महत्वपूर्ण है तो ये सेवा अर्चा विग्रह की सेवा करना और बस गाय की सेवा करना और यहाँ वहाँ करना ये सब क्या, से श्रवण कीर्तन ही करो बस, महाप्रभु ने यही कहा है श्रवण कीर्तन। तो फिर इसका परिणाम क्या होगा?
आलसी बनोगे,
आलसी बनेंगे, शुद्धिकरण होगा लेकिन थोड़े समय के लिए। एक बार एक भक्त प्रभुपाद के पास आए कि मैं रोज 64 माला या हरिदास ठाकुर के एकांत स्थान में बैठ के मैं 3 लाख नाम लेना चाहता हूँ, 64 माला नहीं 90 माला से अधिक एकांत स्थान में बैठ के। प्रभुपाद ने मना किया था, वो गया, फिर 3 महीना 1-2 महीना कर रहा था, फिर उसके बाद वो गायब हो, किसी को पता नहीं चला कहाँ है। फिर बाद में देखा तो हवाई के समुद्र के बीच में था, वो रमण कर रहा था। बीच में क्या क्या करते पता है ना, भक्ति से कोई संबंधित नहीं होता, ऐसे हो जाता। हरिदास ठाकुर की नकल करने के प्रयास से आदमी रह नहीं सकता है ठीक से। और यदि समझ लीजिए कि आदमी कर भी सके, उसके अंदर वो क्षमता हो भी दिन भर श्रवण कीर्तन करने के लिए, तो फिर भी क्या करना चाहिए?
गुरु की आज्ञा नहीं हो तो नहीं करना चाहिए
ठीक है, लेकिन क्यों? और क्या सिद्धांत है इसके पीछे?
हमारा प्रचार का संस्था है तो सेवा भी।
हाँ, फिर अन्यों का उद्धार कैसे करेंगे? हम लोग के भी अपने उद्धार के लिए बैठे हैं, इनको बोलते हैं भजनानंदी। और जो गोष्ठानंदी होते हैं वो अन्यों के उद्धार के लिए भी सोचते हैं। भजनानंद केवल अपने उद्धार के बारे में सोचता है, मैं जप करूंगा कीर्तन करूंगा बस। लेकिन गोष्ठानंदी होते हैं वो भी भजन में आनंद लेता है। वो यदि सोचेगा कि मैं दुनिया का उद्धार करूंगा लेकिन मेरा जप नहीं करूंगा, सबको बोलो ना जप करो ले, मैं मेरे लिए जप नहीं, सब करने के लिए समय नहीं, तो फिर वो कैसे होगा? फिर नहीं चलेगा। तो गोष्ठानंदी अन्यों की परवाह करते हैं, इसलिए गोष्ठानंदी को भी आवश्यक है कि सर्वप्रथम वो अपना ख्याल रखे। अन्यों का ख्याल रखने के पहले अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अपना ख्याल रखेगा तो वो तंदुरुस्त रहेगा आध्यात्मिक दृष्टि से, जिससे कि वो अन्यों का ख्याल रख पाएगा। यदि उसने अपने श्रवण कीर्तन के प्रति लापरवाही कर ली, नेग्लिजेंट हो गया, तो फिर वो कैसे प्रचार करेगा? उसकी क्या शक्ति रहेगी प्रचार करने के लिए? तो श्रवण कीर्तन करना चाहिए अवश्य, पढ़ना, क्लास सुनना, जप करना, कीर्तन करना, परस्पर कृष्ण कथा करना, भक्तों के बीच में मिलकर कभी कभी, सब श्रवण कीर्तन है। और बाकी दिन भर फिर हम सेवा करते रहे, वे शाम आरती काशी गोकुल धाम में, क्योंकि इतना परिश्रम होता है, ज्यादा संग भी नहीं है, बहुत समय के बाद इतने भक्त इकट्ठे हुए हैं, ज्यादा संग नहीं है, ये भक्तों को दिन में 2 बार मिलना चाहिए। थोड़े यहाँ काम थोड़े कम गति से भी चले कोई बात नहीं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति बनाए रखनी चाहिए। 1 महीना लगने के बजाय 2 महीना लगेगा किसी काम को, लगने दो, नहीं तो हम कहेंगे धार के लिए समय नहीं है, फिर और बहुत समय लग जाएगा। इसी तरह से प्रगति और तेजी से प्रगति चाहते हैं, परंतु हमारे आध्यात्मिक जीवन का नुकसान हो जाए ऐसे में, इसलिए श्रवण कीर्तन भी करना चाहिए। और फिर बाकी सारा दिन पड़ा है सेवा के लिए, फिर उत्साह से बड़े आतुरता से सेवा करते रहें, मग्न रहें, अधिक सेवा भी करें। प्रभुपाद जी कहा करते थे कम से कम ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वो 6 घंटा सेवा करें, कम से कम, मतलब मंगल आरती जप आदि ये सब छोड़ के और संध्या आरती छोड़ के, बोलते कम से कम 6 घंटा जप होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए। कई बार ऐसे प्रभुपाद के कोट हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे, खूब सेवा करना चाहिए, परंतु सेवा करते करते श्रवण कीर्तन भूलना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण बात है, संतुलन अच्छी तरह से रखना चाहिए दोनों के बीच। फिर हम आजीवन अच्छी तरह से हमारी सेवा और भक्ति कर पाएंगे। एकाध बार कभी थोड़ा बहुत असंतुलन हो सकता है, जैसे जैसे कोई उत्सव है या कोई खास सेवा की कोई विशेष कोई आवश्यकता है तो हमें करने पड़ रहा है, वो अलग बात है, वो एकाध बार कभी होता है। परंतु रोज के लिए हमारे दिनचर्या में हमें संतुलन इस तरह से लाना चाहिए। अच्छा, तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, पढ़िए, तो भक्ति की प्राप्ति का सारांश, तो अभी तक जो भी चर्चा हुई है उसका सारांश यहाँ पे है, तो पढ़िए ऊपर से।
भक्ति की प्रगति,
ये पहला स्तर, फिर
श्रवण कीर्तन द्वारा सिंचन, फिर भक्ति लता विरजा एवं ब्रह्म ज्योति के रूप में श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करती है, इससे कृष्ण प्रेम का फल आता है।
तो भक्ति लता, भक्ति लता बीज प्राप्त करके करने से कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त करने तक क्रमशः कौन से कदम है, वो सब यहाँ सारांश में बताए गए हैं। और प्रभुपाद ने कहा है, महाप्रभु ने भी कहा है कि हर अवस्था में श्रवण कीर्तन को छोड़ना नहीं चाहिए, और यदि कोई छोड़ देता है तो किस लिए छोड़ता होगा, वो अपराध के कारण छोड़ता होगा। इसलिए अब थोड़े श्लोकों में वो अपराध के बारे में चैतन्य महाप्रभु चर्चा करेंगे। 156 श्लोक। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता,
यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता,
उपाड़े वा छिन्ने तारा सुखी जाए पाता,
उपाड़े वा छिन्ने तारा सुखी जाए पाता।
यदि वैष्णव अपराध उठे, यदि वैष्णव अपराध वो भक्त कर लेता है, फिर क्या होता है, हाथी उठे हाथी माता, मतलब वो पागल हाथी वहां प्रकट हो जाता है। तो ये वैष्णव अपराध की तुलना एक पागल हाथी से की गई है। तो पागल हाथी जब एक बगीचे में आता है तो क्या करता है, उपाड़े बाट छिंदे तार सुखी जाए पाता। उपाड़े मतलब या तो उन पौधों को पेड़ों को जड़ से उखाड़ देता है, या तो छिंदे, या तो उनको फाड़ देता है, तोड़ देता है, इस तरह से तार सुखी जाए पाता। फिर जो उसके पत्ते आदि हैं वो सब सूख जाते हैं उस भक्ति लता के। दूसरे शब्दों में वैष्णव अपराध के कारण भक्ति लता सूख जाती है, इसलिए इस पागल हाथी को हमारे जीवन में नहीं लाना चाहिए, ऐसे महाप्रभु बोल रहे हैं। तो भक्ति की प्रगति में बाधाएं, एक है अपराध और दूसरे है अवांछित लताएं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अवांछित लताएं की चर्चा, अब अपराध की चर्चा चल रही है। तो अपराध भी है वैष्णव अपराध और अन्य नामापराध, वैसे वैष्णव अपराध भी नाम अपराध है, परंतु समस्त नाम अपराधों में से सबसे खतरनाक है, सबसे भयानक ये नाम अपराध है। वैसे वैष्णव अपराध के बारे में बहुत कुछ लिखा है, यहाँ तक कि न केवल हमें किसी वैष्णव का अपराध को बुरा भला बोलना नहीं चाहिए, न ही उसकी निंदा करनी चाहिए ना कुछ, परंतु जब हम वैष्णवों को देखते हैं तो प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न नहीं होंगे वैष्णवों को देख के तो यह भी अपराध जैसा माना जाता है। यदि हम किसी वैष्णव को आते आते देखेंगे, अरे मन में विचार करें, अरे ये कृष्णदास आ गए, अरे अरे वो देखो जगन्नाथ दास आ गए, तो ये अच्छा नहीं है भावना। मन में भी विचार करने से आगे वो जबान पे आएगी बात, जबान से फिर कृति में हम लाएंगे इस बात को। वैष्णव अपराध तो क्या है? वैष्णव अपराध कोई पढ़िए जोर से, प्रभुपाद जी क्या क्या कहते हैं इसके बारे में।
यह पागल आदि अपराध है, यह भक्ति लता को उखाड़ देता है, गुरु की अवज्ञा यह विशेष रूप से अपराध जनक है, चार नियमों को भंग करना व मनमाना जीवन जीना भी पागल हाथी अपराध है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि पागल हाथी का अर्थ है जो भक्ति को बलपूर्वक विरोध करे।
वैष्णव अपराध ये तो बहुत बड़ा विषय है, इसलिए इसके बारे में और ज्यादा गहराई में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कई विषय हैं इसके ऊपर, कभी और अलग से ही कक्षा। परंतु कहने का तात्पर्य यह है कि वैष्णव अपराधों में से सबसे खतरनाक है गुरु अपराध और गुरु के आज्ञाओं का पालन नहीं करना इत्यादि, और चार नियमों का पालन नहीं करना या अन्य नियमों का के प्रति मनमाना कोई अपने मनमाने से जीवन बिताना अपना, ये भी एक अपराध हो जाता है वैष्णव। क्यों? गुरु अवज्ञा, गुरु की आज्ञा का, तो ये अपराध माना जाता है। और फिर आगे प्रभुपाद जी कल सुबह ये हम गाएंगे क्लास के पहले, हरे हरे नमः कृष्ण यादव हरे नमः, मंगल आरती में तो दो लाइन इसके गाते ही हैं, परंतु उसमें प्रभुपाद जी एक लाइन बता रहे हैं, तादेर चरण से भी भक्त सन्निवास जन्म जन्म होए अभिलाष। तादेर षड गोस्वामी की बात करते करते वो कहते हैं कि तादेर चरण से भी भक्त सन्निवास, कि मैं उनके चरण कमलों में निवास करना चाहता हूँ, जन्म जन्म हो यही अभिलाष, जन्म जन्मांतर तक मुझे मेरी यही एक इच्छा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्वज जो हमारे आचार्य हैं उनका अनुगमन करना बहुत आवश्यक है, यदि उनकी लापरवाही करेंगे उनका तिरस्कार करेंगे तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, पढ़ लेते हैं। वैष्णव संघ में भक्ति भाव नहीं, कहाँ गया? हाँ ठीक है, हाँ ओके। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों के संग में हमारी भावना अच्छी बढ़ती है। ठीक है पढ़ो।
वैष्णव संघ में भक्ति स्मरण करे एवं उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करें कि अपने आध्यात्मिक गुरु गोस्वामियों ने आपको निरंतर आचार्यों के दास का दास, इस मानसिकता से व्यक्ति को भक्त समाज नहीं त्यागना चाहिए।
अयो यो कर रहे हैं मानस, पूर्ववर्ती आचार्यों का स्मरण करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, और पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रतिनिधि कौन हैं?
गुरु
गुरु। जब हम श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ते हैं तो हम वास्तव में देखते हैं कि उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को अपने तात्पर्यों में सम्मिलित किया हुआ है, अपने भी साक्षात्कार उसमें व्यक्त किए हैं, साथ साथ कभी कभी वो कहते हैं कि जीव गोस्वामी पाद ऐसे कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे करते हैं, कभी कभी नहीं कहते हैं, परंतु उनके बताए हुए चीजों को अपने तात्पर्य में रख देते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में उन्होंने अपने गुरु महाराज श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टीका से बहुत कुछ लिया है। यदि आप भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चैतन्य चरितामृत टीका पढ़ेंगे तो उनमें से बहुत सी चीजें एक समान है, तो प्रभुपाद जी ने उनकी टीका से ली। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ के उनके प्रवचनों को सुन के हमारा संबंध पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ बड़ा सुदृढ़ रहेगा। पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएं भी प्रभुपाद जी के टीकाओं में हैं पहले से, और फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे अपने आप को ये हाथी माता से बचाना चाहिए।
दूसरा ये भी होता है कि क्षमता नहीं है दुनिया।
सुना आपने? प्रत्यक्ष कुछ गुरु कभी बोलते हैं तो वो नहीं करना, ये गुरु अवज्ञा तो है ही, परंतु यदि कोई सामान्य बात सामान्य आज्ञा है सबके लिए है और चाहते हुए भी वो नहीं कर पा रहे शिष्य, ऐसे नहीं कि जानबूझकर तोड़ रहे हैं, लेकिन वो क्षमता नहीं है, वो शक्ति इस समय नहीं है उसका पालन करने के लिए, तो फिर क्या वो भी गुरु अवज्ञा हो जाता है? होता है, परंतु साथ साथ हमारे भावना भी महत्वपूर्ण है। हमारी भावना कैसे रहनी चाहिए उस समय? यदि हमारी भावना ये रही कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, चलेगा, तो फिर वो अच्छा नहीं है। हमें क्या पछतावा होता है कि हमने गलती कर ली, या वो नियम का पालन नहीं कर सके, वो आज्ञा का पालन नहीं कर सके, तो ऐसे पछतावा की जो भावना है उसको होना आवश्यक है, और ये कोशिश करनी चाहिए कि अगली बार वो गलती नहीं करे। फिर भी जो भी हो, यदि हमारे कमजोरी के कारण हो, हृदय दौर्बल्यम, हमें भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। निराश होकर ये नहीं सोचना चाहिए हमारी बात बस की बात नहीं है, चलो हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं, जारी रखना चाहिए। निरुत्साही नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में हमारा श्रवण कीर्तन सेवा छोड़ना नहीं चाहिए, और आगे चल के यहाँ प्रभुपाद जी बताएंगे भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालत में। इसलिए यहाँ अभी महाप्रभु बताने वाले हैं कि ऐसे चीजों से हमें सुरक्षित कैसे रहना चाहिए, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। तो बाद वाला श्लोक, ताते माले यत्न करी करे आवरण,
ताते माले यत्न करी करे आवरण,
अपराध हस्तिर जय छे न होय उद्गम,
अपराध हस्तिर जय छे न होय
उद्गम। ताते माले यत्न करी करे आवरण, ताते मतलब अतः, देयरफॉर, तो माली को क्या करना चाहिए? तो भक्त को चाहिए कि वो अपने सुरक्षा के लिए एक आवरण बनाए, भक्ति लता को घेर के, ताकि जब भी कोई पागल हाथी अंदर नहीं आ सके। मजबूत आवरण होना चाहिए, जितना आवरण मजबूत हो उतनी हमारी भक्ति लता सुरक्षित रहेगी। तो भक्ति लता के लिए आवरण क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों का संग, ये सबसे शक्तिशाली आवरण है। इसलिए हमारे भक्ति लता की सुरक्षा के लिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को भक्तों के, शुद्ध भक्तों के संग से घेर के रखें। और आगे चल के प्रभुपाद जी इस बात को भी कहते हैं, यदि भी हम ऐसे सोचें कि हमारे संस्था में बहुत नकली भक्त हैं या अभक्त हैं, फिर भी हमें संस्था को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे बड़ा आवरण क्या है? शुद्ध भक्तों के संग से अपने आप को घेर के रखना, शुद्ध भक्तों के संग में रहना। फिर कोई कह सकता है शुद्ध भक्त है ही नहीं यहाँ, ये संसार में कोई शुद्ध भक्त नहीं सिवाय मैं। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जो भी हो संस्था को छोड़ो नहीं। तुम्हारी भावना जो भी हो सकी, भक्त कैसे है, नकली है, असली है, जो भी है छोड़ना नहीं भक्तों के संग। भक्तों के संग में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। भक्तों के संग को छोड़ के जाएंगे तो निश्चित ही धोखा है, खतरा है और हमारा पतन होने की पूरी पूरी संभावना है। जब शुद्ध भक्तों के संग में हम रहते हैं तो पागल हाथी को कोई अवसर नहीं मिलेगा आके भक्ति लता को उखाड़ने के लिए। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम अभक्तों का संग करते हैं तब हम उस पागल हाथी को छोड़ देते हैं हमारे भक्ति लता के ऊपर, फिर वो आके भक्ति लता को उखाड़ देता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, कि वैष्णव का पहला काम है असत संग को त्याग करना। क्योंकि असत संग को जितना हम स्वीकार करेंगे उतना ही हम वैष्णव अपराध करेंगे, उतना ही हम नियमों का पालन नहीं करेंगे और उतना ही फिर पागल हाथी, हाथी माता वो हमारे जीवन में आ जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है, सोशल एनिमल। दूसरे शब्दों में इंसान संग के बिना नहीं रह सकता है, संग में ही रहना पड़ेगा, अकेले अकेले नहीं रह सकता इंसान। तो यदि वो भक्तों के संग में नहीं रहेगा तो निश्चित ही अभक्तों के संग को स्वीकार करेगा। और इसलिए जो भी हमारे भक्ति लता का विकास हुआ है अब तक, वो भक्तों अभक्तों के संग में आके वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे भक्ति लता का आवरण बहुत ख्याल से हमें रखना चाहिए, नियमों का पालन करके और शुद्ध भक्तों के संग में रहके। ठीक है, तो इसका सार यहाँ पे है, पढ़िए।
प्रबंधी से भक्ति लता की रक्षा करें, अभक्तों के संग का त्याग, आपको भक्तों के संग से सुरक्षित करना, चार नियमों का पालन।
तो हमारे भक्ति लता को आवरण से रखना, सुरक्षित करना, इसका क्या मतलब है? कौन सी तीन चीजें करनी है?
भक्तों का संग त्याग, भक्तों के संग में सदैव रहना, चार नियमों का पालन करना।
केवल चार नहीं और भी सभी नियमों का पालन करना। तो यदि हम ये तीन चीजें करेंगे तो हमारे भक्ति लता को हम सुरक्षित रखेंगे, फिर उसमें पागल हाथी, अपराध वाला पागल हाथी अंदर आके हमारे भक्ति लता को उखाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न था?
ये अब भक्तों का संग हमेशा रहना, इससे हम माता अपराध से बच सकते हैं, परंतु कभी कभी उन भक्तों के प्रति ही हम अपराध करते हैं, खुद भक्तों के प्रति उनका दोष देखना या फिर कुछ बुरा भला कहना, ये भी तो अपराध है।
तो प्रश्न ये है कि भक्तों के संग में हमेशा रहना चाहिए, भक्तों के संग को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, परंतु भक्तों के संग में रहते ही यदि हमने किसी भक्तों के अंदर दोष देखे या कुछ भला बुरा कहा तो ये तो वैष्णव अपराध वहीं तो हो जाता है। हाँ, इसलिए हमें थोड़े सावधान रहना चाहिए, सुरक्षित रहना खराब हो सकती है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हम किनके साथ रह रहे हैं, हम भक्तों के साथ रह रहे हैं। सोच विचार करके हमें कार्य करना चाहिए, बोलना चाहिए। वही बात, अति परिचयाद, क्योंकि इतने साथ में रहते हैं, पास पास में, तो हम साधारण समझ लगते हैं, फिर कभी कुछ कह देते हैं, सोचने लगते हैं, कर देते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। यदि हम कोई बहुत मूल्यवान चीज को पाते हैं तो हम उसको बहुत सुरक्षित रखेंगे ना, उसको यहां वहां नहीं रखेंगे, बड़े अच्छे ढंग से अलमारी में रखेंगे, ताला वगैरह लगाएंगे, देखेंगे कि चोरी वोरी नहीं हो रही है ना, उसी तरह से जीवन में हमारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है भक्तों का संग। इससे अधिक मूल्यवान कोई वस्तु नहीं है। रामानंद राय को जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, उन्होंने कहा भक्तों के संग से दूर रहना। कभी कभी कोई मतभेद हो जाता है, कोई भक्त हैरान हो जाता है, कहता है कि सबसे बड़ा सुख है भक्तों से दूर रहना। लेकिन ये केवल तत्कालीन ऐसे भावना उसके मन में आ सकती है, परंतु अपने आध्यात्मिक बुद्धि से उसको अपने आप को समझाना चाहिए कि वास्तव में अच्छी भावना नहीं है, क्योंकि ये इतना मूल्यवान है, इसलिए इसको बड़े ख्याल से हमें रखना चाहिए। वैष्णव समाज में रहना ये भी एक विज्ञान है, कला है, हमको जानना चाहिए कैसे रहना। इसका मतलब ये नहीं कि अपराध से बचने के लिए हमें कुछ कपटी स्वभाव रखना चाहिए, नहीं, ये भी अपराध हो जाएगा। यदि मतभेद होते भी हैं, तो मतभेद को भी सुलझाने की पद्धति होती है वैष्णव सभ्यता के अनुसार। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में भी मतभेद होते हैं। एक गोपी कहते हैं ऐसे करना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए, दूसरे गोपी कहते नहीं वैसे होना चाहिए। तो मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हमारी भक्ति की परिपक्वता किसमें है कि इन मतभेदों का सामना हम कैसे करते हैं, कैसा हमारा प्रतिकार रिएक्शन रहता है इस मतभेद के प्रति। इसलिए बड़े सोच समझ के, अकलमंदी से और भक्ति भावना से हमें वैष्णव समाज में रहना चाहिए, फिर वास्तव में बड़ा आनंद आएगा। वैष्णवों को प्रसन्न करना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या चाहिए वैष्णव को खुश करने के लिए? एक आध कभी गुलाब जामुन दे दिया महाप्रसाद, कितना खुश हो जाएगा। गुलाब जामुन से कितना खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता था, मैंने यूं कह दिया है। तो वैष्णव को प्रसन्न करना वो बहुत इतनी मुश्किल बात नहीं है। हालांकि कई लोग अपने स्वभाव के कारण कभी चेहरे पे कभी मुस्कान दिखाते ही नहीं है, बिल्कुल गंभीर रहते हैं। फिर भी ऐसे व्यक्ति वैष्णव भी हो, उसको भी प्रसन्न करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आसानी से वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्यों इस मौके को हमें खोना चाहिए? वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो बताया करते थे ना, सुई की और छाने की उदाहरण आप जानते हैं ना? कौन बता सकते है? सुई है, हाँ,
एक सुई है, वो को देख, सॉरी, छलनी सुई को देख के बोलती है, देखो देखो तुम्हारे अंदर एक छेद है, पर वो ये भूल जाती है कि उसके अंदर छोटे अंदर हजारों छेद है। तो सुधर महाराज बताना चाहते थे कि हम दूसरों में दोष ढूंढते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे स्वयं के अंदर कितने सारे दोष हैं, उनको कभी नहीं ढूंढते।
ऐसे कहते हैं ना कि हम उंगली दिखाते हैं किसी को, तो एक उंगली वहां दिखा रहे हैं तो तीन उंगली हमारी हो रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो इतने हमारा जो बड़ा भाग्य है, हम इतने भाग्यवान हैं, वो भाग्य हमसे कहीं छीन नहीं लिया जाए। कि प्रकृति का नियम है, जब प्रकृति हमें कोई चीज प्रदान करती है और उसका हम सही उपयोग नहीं करते हैं, तो प्रकृति उस चीज को ले लेती है हमसे। जैसे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, इसलिए तो मनुष्य जीवन हमें मिला है। यदि हम इस चीज में रुचि नहीं रखते हैं, तो माता प्रकृति सोचेगी फिर मनुष्य शरीर उसको दे के क्या फायदा, उसको पशु का शरीर देते हैं, क्योंकि जो दिया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया, तो वो ले लेना चाहिए वापस। तो ठीक उसी तरह से भाग्य से, बहुत बड़े भाग्य से हमें भक्तों का संग मिला है। तो यदि हमने भक्तों के संग का लाभ सही तरह से नहीं लिया, तो फिर कृष्ण सोचेंगे कि इसको संग से दूरी रखेंगे अच्छा रहेगा, फिर तब पता चलेगा कि हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए अपने आप को भक्तों के संग में घेर के रख लेना चाहिए, भले उसमें थोड़े दोष क्यों ना हो, उस संग में हमें लगते हैं कि ऐसे दोष हैं, फिर भी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि उस संग को छोड़ के हम असत संग में जाएंगे तो फिर कोई भी संभावना नहीं रहेगी। हो सकते होंगे, निश्चित होंगे।
तो हमारे इतने भी होंगे हमारे लिए समय क्रम से बनाएंगे तो मतभेद होंगे।
कौन उत्तर देंगे?
आध्यात्मिक जगत में भी मतभेद हो सकते, जैसे कि भगवान को आज ये ड्रेस पहनेंगे कि वो ड्रेस पहनेंगे, दोनों अलग विचार हो सकते हैं। तो ये मतभेद
प्रेम से होते क्योंकि हम बद्ध स्तर में हैं।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतभेद होता है ना।
मतभेद अच्छा है
ना। तो वैसा ही मतभेद यहाँ क्यों नहीं किया जाए,
क्योंकि हम बद्ध स्तर में
हैं ना। हाँ, तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि मतभेद हो भी तो कैसे उसका मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो लेकिन भेद मत करो। इस साथ मेरा मतभेद हुआ तो अभी मैं
बात
नहीं करूं।
मैं मेरा प्रश्न मैं चाहिए सीधे कि मतभेद हो कैसे सकते हैं,
क्योंकि हम व्यक्ति हैं और व्यक्तित्व का मतलब है हमारे अंदर स्वेच्छा है। हम सब स्वतंत्र हैं थोड़ी मात्रा में, लेकिन स्वतंत्रता भगवान ने हम सबको दी हुई है। एक व्यक्ति को मौसम्बी पसंद है, दूसरे व्यक्ति मौसम्बी का नाम भी नहीं सुनना चाहता है। एक को पीला रंग पसंद है, एक को नीला रंग पसंद है। एक कहता है आज हम भगवान को ये पोशाक पहनाएंगे, दूसरा कहता है नहीं नहीं हम ये पहनाएंगे। भगवान का श्रृंगार करते समय कहते हम इस तरह से फूलों को सजाएंगे, कहते नहीं 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 उस तरह से सजाएंगे। अरे ये ऐसे कैसे कहते, मेरी बात नहीं मानता है, देखो ऐसे क्यों हुआ, ये अच्छा भक्त नहीं है, फिर उसके बारे में बुला सोचे। तो मतभेद होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक के सोचने का विचार अलग है। परंतु जब मतभेद होते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, हमारा व्यवहार कैसे होता है, वो महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हम सब व्यक्ति हैं, स्वतंत्र हैं, इच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमारे भिन्न भिन्न मत होते हैं। कोई दो इंसान एक जैसे नहीं होते, इंसान नहीं कोई भी दो प्राणी, जुड़वे भाई भी हर तरह से एक जैसे नहीं होते हैं, न शरीर से, न बुद्धि से, न मन से। ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई दो व्यक्ति बिल्कुल हर विषय में एक जैसे ही सोचते हैं, नहीं हो सकता। तो यदि गोलोक वृंदावन में मतभेद है और वो प्रेम के आधार पे है, तो वही प्रेम हम यहाँ क्यों नहीं लाए, ताकि मतभेद हो भी तो कोई समस्या नहीं होगी। मतभेद को दूर नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ से मतभेद करें। ये हो भी जाए, यदि जरूरी नहीं है कि होना चाहिए, जानबूझ के चलो वो बोल रहे हैं पीला ड्रेस, हम जानबूझ के मतभेद करेंगे, बोलेंगे दूसरे रंग का ड्रेस चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। परंतु यदि हो भी जाता है तो उसको वैष्णव पद्धति से सुलझाना चाहिए। ये परिपक्व वैष्णव की बात होती है। जो कच्चा वैष्णव है फिर वो दिल में बात रखता है सालों भर, वो भूलता नहीं है, और फिर उनसे बात नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, वो कच्चे भक्त ऐसे बोलते हैं। और कच्चे भक्त भी होते हैं कि मेरी ही बात माननी चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही सेवा भगवान की होनी चाहिए। लेकिन दूसरे भी लोग होते हैं, वो भी सेवा करना चाहते हैं ना, वो भी सिंसियर भक्त हैं। तो इसलिए बहुत समझदारी से काम चलना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। यदि कोई भक्त सोचेगा कि मेरी ही तरह से सेवा चलना चाहिए तो फिर भक्त समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा।
ड्रेस पहनाना चाहिए नीला, तो आचार्य ने बोला है कि पीला पहनाना है नीला, तो उनकी बात सुनकर हम एग्जीक्यूट
नहीं, आचार्य ने नहीं बोला है कि पीला आज पीला पहनाओ या कल पीला पहनाओ, ये नहीं बताया कि आज बैंगन की सब्जी करो या आज टमाटर की सब्जी करो। उन्होंने हमें सिद्धांत दिए, सिद्धांतों को हमारे परिस्थिति में हमें लगाना है, उसके लिए बुद्धि चाहिए, आध्यात्मिक बुद्धि। डिटेल्स जो है, जो छोटी छोटी बातें हैं, वो उन सिद्धांतों के आधार पर हमें हमारे शुद्ध आध्यात्मिक बुद्धि और समझदारी से निपटाना चाहिए। स्पष्ट हुआ? हाँ, थोड़ा जोर से।
गुरु से जब उनको आदेश मिलता है,
हाँ,
तो कुछ कुछ सेवा में अभी मैं मतलब प्रैक्टिकली अब अभी मैं उसमें एक और से नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना चाहिए, ये अपनी गुरु है और भौतिक ये अभी तक बनाया नहीं है, उनको थियोरेटिकल ये भी उनका आदेश है, फिर भी हम लोग उनको उतना ज्ञान, ऐसा मन में जब शंका आता है तो उतना ज्ञान नहीं है उसके बारे में। आध्यात्मिक विषय में अच्छा ज्ञान है और भौतिक विषय में उसको ज्ञान नहीं
हो सकता है, ऐसे हो सकता है। आध्यात्मिक गुरु का ज्ञान काम ये नहीं है कि वो हर भौतिक चीज में बिल्कुल निपुण रहे, प्रवीण रहे। हम ये अपेक्षा करेंगे गुरु को डॉक्टर भी होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, उसको अकाउंटेंट होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, मतलब दुनिया में जो भी कुछ है वो गुरु होना चाहिए। गुरु का काम नहीं है ना, लेकिन हो सकता है, परंतु कभी कभी किस बारे में है ये, कैसे विचार है ये, हमें सोच समझ के करना चाहिए। दृष्टिकोण क्या है वो समझना चाहिए। उस परिस्थिति में हमको देखना चाहिए कि क्या है, केस टू केस वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो है तो क्या होना चाहिए, जाके बताना चाहिए कि नहीं नहीं जैसे मान लो कि कोई अकाउंटेंट है, वो खाते हिसाब किताब लिखता है और वो बताते हैं कि देखो आजकल सरकार का नियम इस तरह से है, तो जो हम पैसे का हिसाब किताब लिखते हैं इसके लिए हमारे लिए ऐसे ऐसे हमको दान लेना चाहिए, ऐसे हम नहीं ले सकते। तो गुरु नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसे करना चाहिए, नहीं, वो बोलेंगे हाँ भाई तुम जानते हो कानून वगैरह, हम नहीं जानते, ठीक है ऐसे ही करेंगे। यदि गुरु ने ऐसे कुछ कह भी दिया है, वो तो आखिर इस संस्था को चलाने के लिए मदद कर रहे हैं ना, तो यदि ऐसे क्षेत्र में वो कुछ बोलते हैं और उस क्षेत्र में किसी कोई विशेषज्ञ है, उसमें स्पेशलिस्ट है, तो अवश्य आके नम्रता से बोल सकता है, उसमें क्या है। वो आखिर हिसाब किताब के गुरु नहीं है ना, अकाउंट के गुरु नहीं है वो, है ना, वो किसके गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है ना। फिर भी उनको जिम्मेदारी होती है सब चलाना, ये संस्था चलाने का काम उन पर भी है, तो इसलिए सबकी सहायता से काम बढ़ाते हैं, इसलिए सहयोग की भावना से आगे चलना चाहिए। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु है ना, जो भी उनके मुख से वाक्य निकलेगा, सरकार का कानून जो भी हो, हम अकाउंटेंट है फिर भी हम बोलेंगे नहीं क्योंकि ये गुरु है, ऐसे नहीं। लेकिन नम्रता से जाके बता सकते ऐसे कानून बदल गया है सरकार का, अभी नया कानून इस तरह से है तो हिसाब किताब इस तरह से लिखना चाहिए, तो फिर वो मान लेंगे, उसमें क्या है। तो एक व्यक्ति को सब कुछ मालूम होना चाहिए तो संभव नहीं है ना। ठीक है, ये सही है, हमारे जीवन शैली के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी होना चाहिए। दही रात के समय नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीजें रात को नहीं लेनी चाहिए, दही जो होता है वो दिन में लेना चाहिए, है ना? सभी को जानना चाहिए। इसलिए हमें, हम ये सब भूल चुके हैं। आजकल हमारे कंप्यूटर मोबाइल के जमाने में हम ये सारी चीजें भूल गए। इसलिए तो ये गोकुल धाम की कल्पना है, क्यों? ताकि हम ये सब सीखें फिर से, जो हम सब भूल गए हैं ना इतने सालों से। पहले तो जीवन की पद्धति ऐसी थी तो सभी लोग जानते थे, प्रभुपाद कितना जानते थे, वो टूथपेस्ट भी बनाने के फॉर्मूला जानते थे, कैसे बनाना चाहिए, क्या साबुन कैसे बनाना, वो बचपन से सीखा करते, उनके माता पिता ने सिखाया था, आजकल कोई सिखाता नहीं है। तो इसलिए सब हमें जानना चाहिए कि जीते कैसे कैसे होना चाहिए, कपड़े कैसे धोने चाहिए हमें पता होना चाहिए, प्रसाद कैसे बनाना है, कैसे साफ करना है किसी चीज को, झाड़ू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये सब जानना चाहिए हमको। साधु को जानना आवश्यक है। थोड़ी चीजें जैसे आहार के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए। हो सकता है बहुत कुछ नहीं मालूम, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें तो आवश्यक है जानना। तो हमारे साधना का पालन वगैरह करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई बार हमारे पास बहुत से लोग आते हैं कि हमारे बेटे का ये है, ऐसे काफी एक साल से बहुत बीमारी चल रही है, या दो महीने से बीमारी हो गई, ऐसे पेट में दर्द, हम क्या बता सकते, बोले डॉक्टर को दिखाइए। हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में, डॉक्टर को दिखो, वैद्य को दिखाइए। जो हमारे क्षेत्र की बात नहीं है तो हमें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए कि जैसे हमको सब कुछ मालूम है। फिर भी जो भी थोड़ी बहुत जानकारी यदि है जो हमारे सिद्धांत अनुसार है, थोड़ा कुछ हम बोल सकते हैं, उसमें कोई राय नहीं है, ठीक है?
आपने बताया कि जो हमारे अंदर मतभेद आते हैं उनको वैष्णव पद्धति से सॉल्व करना है, तो वैष्णव पद्धति क्या है? मतभेद
आप बताइए, कौन मतभेद को सुलझाने के लिए वैष्णव पद्धति क्या है? इष्ट गोष्ठी तो सबको बुला के किया जाता है,
अपने मत को आगे न रखना, पहले सुन के उसको भी थोड़ा सुन के समझना कि ठीक है कि नहीं।
सर्वप्रथम नम्रता, दिमाग को शांत रखना, है ना, धीरज रखना कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है उसको सुने तो सही, है ना, सुनना तो चाहिए ना पहले कि वो बेचारा क्या बोलना चाह रहा है, नहीं तो मतभेद के लिए भी चांस ही नहीं होगा, मत सुनेंगे तब पता होगा। तो पहले से कोई कुछ कहना चाह रहा है इसके बारे में, सुनना चाहिए। दूसरी बात, उसका मत हमारे मत से अलग भी हो तो सोचना चाहिए कि क्या ये मत में कोई तथ्य है, क्या सही है, कैसे है, ये सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे मत से अलग है इसलिए इसके बारे में मैं सोचूंगा ही नहीं, या ये मेरे मत से अलग है इसलिए निश्चित ही गलत है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो सोचने के थोड़ा विचार कर चर्चा कर सकते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा सुझाव आपका, लेकिन ऐसे होगा तो क्या, शांति से चर्चा कर सकते हैं, शांतिपूर्वक चर्चा करके फिर कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बाहर की दुनिया में भी लोग ऐसे करते हैं, तो वैष्णव समाज में क्यों नहीं हो सकता ऐसे। कभी कभी बहुत बड़े बड़े विषय भी आते हैं हमारे सामने, कभी कभी छोटे विषय सामने आते हैं, बड़े शांति से हमें बैठ के सुलझाना चाहिए, नम्रता से। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सही हूं, हो सकता है वो सही है, भले वो नया भक्त क्यों ना हो, बहुत नया भक्त हो सकता है, लेकिन उसने अच्छा सुझाव दे दिया तो मान लेना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि सबको साथ लेकर आगे बढ़े, केवल मेरी ही बात चलनी चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर मतभेद ज्यादा होंगे और फिर वो लोगों के हृदय में जलन होगा, अरे रे इन्होंने ऐसे क्यों मेरे साथ बर्ताव किया। नम्रता से बात आगे बढ़ाएंगे तो फिर सब ठीक है, और यदि कोई गलत फहमी तो भक्तों के बीच में हो भी जाए मतभेद के कारण तो क्षमा याचना करके मामले को निपटा लेना चाहिए, बस खत्म। लेकिन हम बात को हृदय में रखेंगे, सालों साल तक आंख में आंख नहीं मिलाएंगे, वो वक्त इधर से आएगा हम उधर से जाएंगे, एक दूसरे मंदिर में हम गए थे वहाँ आश्रम में दो ब्रह्मचारी एक कमरे में रहते थे, 7 साल तक बात नहीं कर रहे उनका कोई मतभेद हुआ था, ये आश्चर्य हुआ सुनकर। एक ही कमरे में रहते हैं, 3 लोग रहते हैं एक कमरे में, 3 लोगों में से 2 लोग आपस में 7 साल में बात नहीं करते। फिर उनको बुलाया, बुलाकर फिर आप ही बात करने लगे, फिर वो बाद में। कभी कभी क्या होता है, परिपक्वता भी नहीं होने के कारण भी ऐसे होता है। और मनुष्यों के साथ संबंध कैसे रखने चाहिए, कैसे दुनिया में होना चाहिए, इतने परिपक्वता नहीं होती कभी कभी, तो हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, आगे पीछे सोचते नहीं हैं। तो वैष्णव नहीं भी हो तो समाज में रहते हुए व्यक्ति को सोच विचार करके व्यवहार करना चाहिए, और जब खास करके वैष्णव है तो बहुत ही सोच के व्यवहार करना चाहिए। नम्रता, यदि हम अपने आप को दासों के दास समझेंगे तो फिर ऐसी समस्या नहीं आएगी, सही है ना? केवल कहने के लिए
हम कहते हैं हम दासों के दास, लेकिन जब आता है
बॉसों में चाहते हैं तो अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हम दासों के दास ही हैं, इसलिए तो श्रवण जरूरी है ना। बार बार उसी चीज को सुनते रहना, आवश्यक नहीं कि हर प्रवचन में हम हर चीज नई सुनते रहें। कई बार अच्छा ये रहता है कि उन्हीं चीजों को हम बार बार सुनते रहें, ये भी बहुत जरूरी है। तो हम दासों के दास हैं, ये बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना। और जब बार बार सुनते हैं तो बात मन में बैठती है, तो एक दिन तो हम सोचेंगे चलो करके देखना चाहिए। करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, सभी लोग करते हैं, सब वैष्णव करते हैं ऐसे, और नहीं हम लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें देखना चाहिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं। दासानुदास का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति के हर बात में हाँ मिलाना, चलो प्रभु हम सिनेमा देखने जाते हैं, ठीक है प्रभु मैं तुम्हारे दासों का दास हूँ, चलो जो आ जाए। ये दासों का दास नहीं, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, और गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ही, उनके शिक्षणों के अनुसार ही फिर हमें अपने दैनिक कार्यों को करना चाहिए। अपने हृदय की बात को व्यक्त करने में डरना नहीं चाहिए, सब शाकाहारी हैं इधर संस्थान में, वो खा नहीं जाएंगे। तो अपने हृदय की बात हमें वातावरण ऐसे करना चाहिए खुला खुला कि किसी भी भक्त को, नए नए भक्त को भी अपने हृदय की बात बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। परंतु कैसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं कि नम्रता से बोलना चाहिए, एकांत में जाके किसी वरिष्ठ भक्त से बात करना चाहिए, ऐसे नहीं कि सब भरी सभा में हमने कुछ भी कह दिया, ऐसे नहीं। किसी भी व्यक्ति को डर नहीं लगना चाहिए कि हम हृदय की बात नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं। ये भक्तों का समाज डर, लोगों को डरा के रखने के लिए नहीं है, लोगों के हृदय में प्रेम जागृत करने के लिए, इसलिए वो एक खुला वातावरण होना चाहिए, इसमें एक दूसरे के प्रति सब प्रेम से बर्ताव करें, किसी को दबा के नहीं रखा जा सकता, ना दबाना चाहिए, और कोई रखता है कि मुझे कुछ बात कहना है, अवश्य, लेकिन वैष्णव पद्धति से। किसी को कोई शिकायत भी है बोल सकते हैं, लेकिन शिकायत बोलने का स्थान कौन सा है, समय कौन सा है, वो भी सोच विचार करके बोलना चाहिए। और सभी भक्तों को चाहिए कि दूसरा कोई भक्त अपने मन की बात व्यक्त करना चाहता है तो सुन लेना चाहिए, उसे दबाना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमारे मन की बात हम दिन भर व्यक्त करते रहे और दूसरे लोगों को अपनी सेवा छोड़ के हमारी बात सुनने पड़ती, ऐसा भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हम सोचे कि बिल्कुल अकेले में ही रहे, एकांत स्थान में जाके भक्तों के संग में नहीं रहे, अकेले रह के अपना पढ़ाई करें, एक भी व्यक्ति नहीं पास में, कब तक कर सकेंगे? क्या अकेले जाके सेवा करें, भक्तों के संग में अच्छा नहीं लगता, कब तक सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए ये हमारी तपस्या है कलयुग की, सबके साथ मिलजुल के रहना प्रेम से। मतभेद होते हैं, कोई कहते हैं ऐसे करना चाहिए, कोई वैसे करना चाहिए, तो ये हमारी दक्षता है, ये हमारी निपुणता है, हमारे सिंसेरिटी की परीक्षा है, हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारी भक्ति भावना है, ये हम कैसे इस मामले के में रहे। हमें जान लेना चाहिए कि भक्तों के सिवाय तो सेवा हो ही नहीं सकता, या अकेले होके हम सेवा कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने मन को समझाना चाहिए, मन हमें बहुत हैरान करेगा। मन को हमारे आध्यात्मिक बुद्धि से हमें समझाना चाहिए, ठीक है? इसलिए तो हम हमारे स्वभाव को बदलने के लिए ही तो भक्तों के समाज में आए हैं ना। कृष्ण भावनामृत में आने का कारण ही तो ये है कि हम अपने स्वभाव को बदलें। पहले हमारा स्वभाव कैसे था? स्वार्थी था और बहुत कुछ और दोष थे, अभी भी दोष हैं थोड़े बहुत, परंतु भक्तों के संग में रह के भक्ति करके धीरे धीरे ये दोष कम होते जा रहे हैं, होंगे। इसलिए हमें निष्ठापूर्वक रहना चाहिए, आगे अपने साधन आदि भजन को करते रहना चाहिए, ठीक है? अगला भी और 5-10 मिनट है तो आगे अभी अपराध की बात हुई ना, आपको याद होगा कि बाधक चीजें दो हैं भक्ति में, एक है अपराध और दूसरे हैं
अवांछित
लताएं। तो उनके बारे में अब महाप्रभु चर्चा कर रहे हैं। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा,
किंतु लतार संगे उठे उपशाखा,
भुक्ति मुक्ति वांछा जातो असंख्य तार लेखा,
भुक्ति मुक्ति वांछा जातो असंख्य तार लेखा।
अब जैसे जैसे माली वो भक्ति लता को पोषण दे रहा है, सिंचन दे कर रहा है श्रवण आदि से, अभी क्या होता है, जैसे जमीन में आप पानी दे रहे हो, आपने बीज बोया है, बीज बो के आप उसके ऊपर पानी डाल रहे हो, लेकिन हो सकता है कि अपने आप पहले से हवा से उड़ के या किसी भी कारण से या किसी पशु के विष्ठा से कुछ भी हो, वहां कोई अन्य बीज आ गया होगा जमीन में। ऐसे जमीन में अन्य बीज भी बहुत सारे हो सकते हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता। जब हम पानी डालेंगे हमारे बीज के ऊपर जो हमने बोया है, तो उस बीज को पोषण मिलता है, साथ साथ जो अन्य बीजे हैं वहां पे जमीन में उनको भी पोषण मिलता है, तो वो भी उगने लगते हैं। इनको उपशाखाएं कहते हैं, अवांछित लताएं हैं ये। तो हमारे भक्ति लता के साथ साथ भी ये अन्य जो इच्छाओं का बीज है, अन्य अभिलाषा बीज है, वो भी श्रवण कीर्तन से पोषण प्राप्त करके बढ़ने लगते हैं। ऐसे भक्ति लता बीज हमको मिली है ना, लेकिन हृदय में पहले से और भी बहुत सारे बीज हैं, कर्म बीज है, ज्ञान बीज है, बहुत सारे तरह तरह के बीज हमारे हृदय में पहले से है। तो जब हम श्रवण कीर्तन आदि करते हैं तो वो भी बढ़ने लगते हैं। और महाप्रभु कहते हैं ये क्या है, भुक्ति मुक्ति वांछा, ये दो प्रकार के उपशाखाएं होते हैं जो हमारी भक्ति लता के प्रगति को रोक देते हैं। एक है भुक्ति यानी भोग की इच्छाएं और दूसरे है
मुक्ति
की इच्छा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। और ऐसे इनकी जो विविध प्रकार के हैं, असंख्य तार लेखा, भोग की इच्छा विविध प्रकार की हो सकती है। तो अब वो बताएंगे कि ये जो अवांछित लताएं हैं, उपशाखाएं हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। निषिद्धाचार कुटी नाटी जीव हिंसना,
निषिद्धाचार कुटी नाटी जीव हिंसना,
लाभ पूजा प्रतिष्ठा दि यत उपशाखा गण,
लाभ पूजा प्रतिष्ठा दि यत उपशाखा गण।
तो ये छह प्रकार के लताओं के, अवांछित लताओं का उल्लेख यहाँ पे वो कर रहे हैं। सबसे पहला है निषिद्धाचार, प्रिंट आउट नहीं दिया क्या? भुक्ति वांछा, मुक्ति वांछा, निषिद्धाचार, कुटीनाटी, जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा। तो पहले दो हैं पर अभी छह हैं। तो इस तरह के ये आठ उपशाखाएं हैं। वैसे तो भुक्ति और मुक्ति में ही सभी आ जाते हैं, फिर भी तो निषिद्धाचार इसकी, इसका वर्णन भी आगे है ना, इसका चार्ट कौन सा है जरा दिखाना। अच्छा, तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ये निषिद्धाचार क्या है। जिन चीजों का अभ्यास करने से या जिस आचरण को करने से हमारी भक्ति नाश हो जाती है या भक्ति के लिए जो बहुत प्रतिकूल है वो निषिद्धाचार है। जैसे चार नियमों को तोड़ना, ये हमारे निषिद्धाचार। तो निषिद्धाचार क्या है ये चार नियमों के संदर्भ में? मांसाहार करना ये निषिद्ध है। मांसाहार करना और
जुआ खेलना,
अवैध स्त्री संग करना, मादक द्रव्यों का सेवन करना, नशा पान आदि करना, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जो निषिद्ध आचार है। जब खास करके जो चार नियम इत्यादि, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ खास करके चार नियमों की चर्चा करते हैं।
अत्याहार प्रयास हो गया था, अत्याहार प्रयास वो भी निषिद्धाचार में आता है।
वो सब आ जाएगा अवश्य, परंतु खास करके यहाँ पे इस तरह कोई मेहमान आए वो भी क्लास में आते हैं। दरवाजा खोल लो, खोलो दरवाजा। हरे कृष्णा, देखे मेरे घर में कौन आ गए, इधर हम पहले रहते थे, अब ये लोग सब आके बैठ गए। वो भी चैतन्य चरितामृत सुनना चाहते हैं। तो ये है निषिद्धाचार। दूसरी बात है कुटीनाटी। कुटीनाटी मतलब छल कपट। छल कपट का मतलब है कि सीधा व्यवहार नहीं करना, एक आदमी से एक बात कहना, दूसरे से दूसरा कुछ कहना, टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार, जैसे राजनीति में होता है ना, एक चीज यहाँ कहना फिर वहां जाके झूठी बात कुछ कहना, एक व्यक्ति को दूसरे के व्यक्ति में लगा देना, उसको दोनों के बीच में झगड़ा करा देना, इस तरह से छल और कपट की जो कपटी जो स्वभाव होता है वो भी हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। तो कूटी नाटी ये भी हमारे भक्ति लता के लिए बहुत हानिकारक है। तीसरी बात जीव हिंसन। किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना या दर्द देना ये जीव हिंसन है। तो इसलिए खास करके जो मांसाहार करना, शिकार करना, ये सब जीव हिंसन है। और श्री प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर परिभाषा देते हैं जीव हिंसन की। एक तो है किसी प्राणी या किसी भी व्यक्ति के शरीर पे हिंसा करना, दूसरी बात है कि किसी के आत्मा पर हिंसा करना, आक्रमण करना, कैसे, उनको कृष्ण भक्ति न देकर। तो जो देश के नेता आदि होते हैं और वे प्रजा को सही धर्म का ज्ञान नहीं देते हैं, जबकि उनका कर्तव्य है, क्योंकि वो प्रजा के माता पिता की तरह होते हैं, प्रजा उनके बच्चों की तरह होते हैं, नेता भगवान के प्रतिनिधि होने चाहिए, परंतु जब वो प्रजा को धर्म के मार्ग से दूर ले जाते हैं, धर्म के मार्ग पे नहीं लाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है। तो किसी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देना, किसी को कृष्ण भक्ति के पथ पर नहीं लाना, ये भी हिंसा है। इसके बारे में भी सोचिए, ना केवल आगे से जाके किसी के ऊपर प्रहार करना, ये तो जीव हिंसन है ही, साथ साथ किसी को कृष्ण भक्ति नहीं देना, ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। इसलिए हमें जोरदार प्रचार करना चाहिए। कई लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर लोगों को केवल इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहते हैं, धार्मिक प्रचार करके भी वो ये नहीं जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो धर्म के नाम पर भोग में हमको लगा देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का जीव हिंसन है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने तीन प्रकार के परिभाषा दी है जीव हिंसन के लिए। जीव हिंसा कौन से तीन प्रकार के होते हैं, कौन बताएंगे? एक है पशुओं के हत्या करना या किसी भी प्रकार से उनको कष्ट पहुंचाना। इसलिए हम भी यहाँ जब गाय बैलों की सेवा करते हैं तो हमें भी देखना चाहिए कि उनको चलाते समय भी ज्यादा कष्ट न दें, उनकी आहार, उनके पानी आदि के लिए पर्याप्त सेवा करें, उनको कष्ट न लगे। ठीक है, और दूसरा
आध्यात्मिक प्रगति में सपोर्ट नहीं करना, नहीं देना कृष्ण भावनामृत, नहीं देना।
किसी को अपने कृष्ण भावनामृत नहीं देना। किसी को यदि हम कृष्ण भावनामृत नहीं दे रहे हैं तो ये भी एक प्रकार के हिंसा है। वो भी अंदर आना चाहते हैं। और तीसरा धर्म के नाम पर उनको भोग में लगाना, ये भी है। ठीक है, अच्छा आगे फिर क्या है? लाभ। तो लाभ ये तो है ही, लाभ के लिए कभी कभी हम अपने आध्यात्मिक जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। कई गृहस्थ भक्त हैं जो जिन्होंने कि ऐसे कोई व्यवसाय चुन लिया जिसमें जितना खतरा है और जितने तनाव है कि उस परंतु उस व्यवसाय में बहुत ज्यादा लाभ है इसलिए उन्होंने ये किया, और फिर उनको इतना तनाव हुआ, उनका ज्यादा जप हो रहा था ना कुछ, तो बहुत ज्यादा ये लाभ के पीछे पड़ने से हमारी भक्ति भी नष्ट होती है। उसी तरह से पूजा, पूजा का मतलब है कि सारे समाज में लोग हमें बहुत सम्मान करें, है ना, ये सब चीजें, साथ साथ में भौतिक कोई उपाधि मिले, पद मिले, उसी तरह से प्रतिष्ठा कि हम समाज में बहुत बड़े व्यक्ति हो जाएं, ये सब चीजों की इच्छा हमारे अंदर रहती है तो हमारी भक्ति लता नष्ट हो जाती है। तो इन 8 चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। अवांछित लताएं भी हैं। जब हम भक्ति में आए ये सारी इच्छाएं पहले से थीं, इनके बीज भी पहले से थे। अभी भक्ति करते करते क्या होता है, हमें प्रतिष्ठा मिलने लगती है, लोग प्रभु जी कहते हैं अभी, है ना, और लोग कभी कभी पैर भी छूते हैं, साधु मानते हैं। तो यदि हम सोचने लगे कि यही भक्ति का उद्देश्य है कि भक्ति करके देखो कितना अच्छा लाभ मिलता है, लोग अभी हमको कितना सम्मान करते हैं, पहले तो कोई देखा भी नहीं था अभी सब लोग इतना सम्मान देते हैं हमको, तो बहुत अच्छी है भक्ति है। दूसरे शब्दों में भक्ति किस लिए है हम भूल गए हैं। अभी धीरे धीरे सूक्ष्म तरह से हमारा मन क्या कहता है कि ऐसे कार्य करो जिससे कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, ऐसे कार्य करो जिससे कि लोग हमें ज्यादा सम्मान देने लगे, तो मन हमें ऐसे धोखा देगा। फिर हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, बल्कि भक्ति क्या होना चाहिए,
भगवान
कृष्ण के संतुष्टि के लिए होना चाहिए। परंतु उसको छोड़ के हम अभी अपने सूक्ष्म स्वार्थ के लिए हम कोई भक्ति करना चाहते हैं, इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो कथा आज यही समाप्त करते हैं, ताकि आज थोड़ा आप आराम कर लो, जाके गायों का दर्शन भी वहां करना है तो कर सकते हैं, गाय उस तरफ है हमारे, लेकिन थोड़ा सींगों से सावधान, वो कभी कभी सर अपना घुमा देते हैं, तो इस तरह से उनके साथ नहीं, पास में नहीं जाना कि वो डर जाए कि ये कोई आक्रमण करने आने वाला है, निडर होके जाना लेकिन आराम से, फिर उनके पास में रहना, वो जानते हैं।